ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि श्रीहरिप्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज नित्यानंद महाप्रभु का आविर्भाव दिन है, उसके संबंध में नित्यानंद प्रभु वास्तव में कौन है, इनकी विशद व्याख्या चैतन्य महाप्रभु की लीला में जो जो जुड़े हैं, इनकी संकीर्तन आंदोलन में जो जो जुड़े हैं, उनको बहुत ठीक ढंग से जानने की आवश्यकता बनी रहती है कि ये व्यक्तित्व कौन है। जगत की उत्पत्ति स्थिति और लय का कारण कौन, ब्रह्मा जी सर्वप्रथम भगवान से ज्ञान प्राप्त करते हैं। वो जन्माद्यस्य सूत्र जो वेदांत सूत्र का सर्वप्रथम सूत्र है, उनमें स्पष्ट होता है कि जन्माद्यस्य यतन्वयादितश्चास्य अभिज्ञः स्वराट तेने ब्रह्मरदाय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो त्रिसर्ग अमृषा धामना स्वेदन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। हमें हमेशा परम सत्य पर चिंतन करना चाहिए। जो भगवान श्री कृष्ण वसुदेव के पुत्र हैं, इन परम सत्य अपने स्वधाम में गोलोक वृंदावन धाम में नित्य विराजमान होते हुए भी ये अपना सारा विस्तार एको बहुश्याम करके कैसे खिलाते हैं, किस ढंग से वो सब कुछ स्वयं जानते हुए भी वो अपनी नित्य लीला में हमेशा प्रवृत्त रहते हैं। तो जो जो जीव इनके जो अंश हैं और इनसे बिछुड़े हैं, इनको सारी भौतिक सृष्टि में इनका समावेश कराने के लिए हाँ जो जो उन्होंने व्यवस्था की, प्रकृति पैदा की, उनको टिका भी रहे हैं और इनका नाश भी कर रहे हैं। तो ये परम सत्य भगवान श्री कृष्ण अपना सारा व्यापार या व्यवहार कैसे कर रहे हैं, इन्होंने ये सारा सर्वप्रथम ज्ञान ब्रह्मा जी को उनके हृदय में गायत्री द्वारा दिया, और गायत्री निकलती है भगवान कृष्ण की बांसुरी से। तो तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, ब्रह्मा जी के हृदय में सर्वप्रथम शिक्षा दी कि सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति और लय के हेतु जो जो सारी रचना है, तो ये जानने के लिए सभी लोग प्रयत्न करते हैं, फिर भी देवता जैसे विमोहित हो जाते हैं तो हम जैसे कोई बात ही कहां। आजकल के साइंटिस्ट सृष्टि कैसे पैदा हुई, जीव कैसे पैदा हुआ, इनकी चर्चा में काफी जुड़ा है, स्वयं अपने आप की खोज में तो सब जुड़े हैं, लेकिन अभूत जन जो जुड़े नहीं हैं, जिनको सिर्फ देहात्म भान ही है, तो उनको कैसे पता चले। तो ये सारी जो व्यवस्था है समझाने की, वो ब्रह्मा जी के द्वारा उन्होंने की। ये सृष्टि की जब उत्पत्ति होती है तो सूक्ष्म पदार्थों से जड़ पदार्थों में होता है, जैसे कि तेजो वारी मृदाम, तेज यानी प्रकाश, प्रकाश में से पानी, वारी यानी पानी, और पानी में से पृथ्वी। ये जो त्रिसर्ग, त्रिसर्ग यानी उत्पत्ति स्थिति और लय, अमृषा धामना स्वेन सरा, स्वयं अपने धाम में रहकर ये सारा नाटक यहां करा, उनकी सारी व्यवस्था करा। तो उसके लिए जो कर रहा है उनके लिए जानना ठीक है, या कैसे कर रहा है वो जानना ठीक है। यदि हम कैसे कर रहा है वो जानते हैं तो उसकी ही महिमा का पता चलता है कि ये कैसे, ये ऐसे स्वतंत्र है, इसलिए स्वराट कहा गया है। अभिज्ञ सब कुछ जानते हुए भी वो अपना नाटक गोलोक वृंदावन में कर रहा है, ऐसे स्वतंत्र। तो तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः, देवता लोग भी जिसकी ये करामत से मोहित हो जाते हैं। जैसे कि ये करामत देखो, तेजो वारी मृदाम यथा त्रिसर्ग अमृषा, त्रिसर्ग में ये सारी एक चीज में से दूसरी चीज बनना, सूर्य के प्रकाश में से पानी निकलना, और पानी में से पृथ्वी पैदा होना। यदि एक समझोगे कि जल का बिंदु यदि कहीं गिरा हो उसे सूखने दो, वहां क्या दिखाई देगा, वो बिंदु की जगह वहां कुछ दाग दिखाई देगा। उसमें देखोगे बारीकाई से तो क्या है, तो पृथ्वी तत्व है जो जल में वो द्रवित हुआ है, पिघला है, जो हम नजर से नहीं देख सकते, लेकिन जब वो सूख जाता है तो तब देख सकते हैं। तो क्या पृथ्वी कहां से पैदा हुई, पानी में से। हम पृथ्वी में से पानी निकालना चाहते हैं, लेकिन पृथ्वी स्वयं पानी से पैदा होती है। तो ऐसी एक सूक्ष्म तत्व से स्थूल तत्व जब बाहर आता है तो देवता भी मोहित हो जाते हैं, और हम जानने की चिंता नहीं करते। तो ऐसे परम सत्य अपने धाम में स्वराट के रूप में वो अपनी लीलाएं करते रहते हैं, और यहां सारी पृथ्वी का प्रकट होना, उनकी स्थिति बनाए रखना, और लय भी करना और उनकी करामत से ही होता है, लेकिन कैसे करते हैं वो थोड़ा जानना चाहिए, क्योंकि उसमें ही परम सत्य की महत्ता बनी रहती है। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी स्वयं अपना ये परम सत्य के बारे में परिचय कराते हैं। तो सर्वप्रथम श्लोक तो आप सभी जानते होंगे, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। जो जो हेतु उनका कारण है, तो कारणों का कारण अंत में तो भगवान एक ही परम सत्य है, उसके पीछे जुड़ा रहना चाहिए। जब भगवान श्री कृष्ण के साथ सारे कारणों नहीं जुड़ सकते हम, तो जिंदगी फेल हो जाती है। यही एकमात्र ऐसे विशिष्ट व्यक्तित्व को ही जानना, लेकिन वो स्वयं अपने आप को प्रकट नहीं करते हैं। ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत, मैं अपने आप को स्वयं योग माया से ढंका रखता हूं और हर एक को मैं नहीं जान पहचान पाता। तो ऐसी सारी स्थितियों में हमें अपनी मर्यादा समझनी चाहिए। तो परम सत्य भगवान श्री कृष्ण है, ऐसी व्याख्या तो शास्त्रों में बहुत मिलेगी आपको, लेकिन उनको प्रकट करने के लिए कौन आगे आएगा? इसलिए ब्रह्मा जी दूसरे श्लोक में ही बता देते हैं, जो गोलोक वृंदावन धाम हैं वो प्रकट है, तो उनका होने का कारण क्या और कौन कौन से भगवान का ऐसा व्यक्तित्व है जो उसको प्रकट कर सकता है? तो सहस्त्र पत्र कमलम महत्पदम, सर्वोच्च स्थान जो है तो गोलोक वृंदावन है, और गोलोक वृंदावन की व्याख्या एक हजारों पोखड़ी वाले कमल के समान बताई गई है। तो सहस्त्र पत्र कमलम गोकुलाख्यम महत्पदम, ये महत्पदम है, ऐसा स्थान है जिसे गोलोक वृंदावन कहते हैं। गोकुलाख्यम महत्पदम तद कर्णिकारम तद धामम तद अनंतांश संभवम, इनकी पंखड़ियां भी इतना विस्तार करती है जो अनंत भगवान का जो अंश है, सर्वप्रथम अंश है उनके द्वारा पैदा हो, अनंतांश संभवम। ये अनंत कौन है? आज यही अनंत नित्यानंद प्रभु के नाम से प्रकट हुए, जो भगवान है ऐसा साबित करके बताता है वो गुरु होता है, वो गुरु होता है। ये गुरु तत्व नित्यानंद राम और आदि वह महाशंकर के नाम से भी जाने जाते हैं, जैसे कि गोलोक वृंदावन भगवान श्री कृष्ण के चतुर्व्यूह। चैतन्य चरितामृत में ये सर्वप्रथम अध्याय में सर्वप्रथम ये गुरु तत्व समझाया है, आदि लीला के सर्वप्रथम अध्याय में गुरु तत्व समझाया, क्योंकि इसके बिना परम सत्य का परिचय नहीं हो सकता। परम सत्य को तत्व कहते हैं। भगवद गीता में बहुत आसानी से ये श्लोक सभी को कंठस्थ हो जाता ही है, क्योंकि वहां गुरु की आवश्यकता के लिए भगवान स्वयं कृष्ण अर्जुन को कहते कि तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदर्शन्ति तं ज्ञानं ज्ञानिन तत्वदर्शिन। तत्वदर्शिन यानी कि ऐसे गुरु जो परम सत्य का परिचय कराते हैं, हाँ उनके शरणागत होना है, उनकी सेवा करना है और बारंबार परम सत्य के बारे में ही प्रश्नोत्तरी करनी है, प्रश्न पूछना है और आपको उपदेश देंगे क्योंकि उन्होंने परम सत्य का परिचय किया है। तो आज वो परम सत्य का परिचय कराने के लिए हमें नित्यानंद राम की आवश्यकता क्यों है वो बाद में कहेंगे। इसीलिए चैतन्य चरितामृत में परम सत्य कैसे विशुद्ध परंपरा में उतरता आया है। देखो भगवान श्री कृष्ण अपने आप को समझाने के लिए स्वयं को नहीं उतारते, मैं कौन हूं क्या। इसीलिए जब अर्जुन की समक्ष भगवान के ऐश्वर्य की बात हुई, भगवान के स्वरूप की भी बात हुई, तो तब हमें दसवें अध्याय और ग्यारहवें अध्याय में जहां भगवान के शक्तियों का आविर्भाव होता है यानी कि प्रगटीकरण होता है, तो शक्ति जब प्रकट होती है तब शक्तिमान का परिचय होता है, ऐसी बात समझाई जाती है। और उसमें भी जब हम काल के खप्पर में हैं, क्योंकि हमें अपनी मर्यादा तो काल द्वारा ही बनी रहती है, काल कालो हम अस्मि लोकक्षय प्रवृद्धो हम करके बता देते हैं कि मैं काल के रूप में यहां खड़ा हूं और अभी सारे लोगों की सफाई कर रहा हूं, उसमें प्रवृत्त मान। तो हमें अपनी मर्यादा है लेकिन वो मर्यादा में भी भगवान देखो अर्जुन को समझा जाते हैं कि विभूति के द्वारा वो भगवान के व्यक्तित्व का परिचय कर सकता है। उसने जब विश्वरूप का दर्शन करने की मांग की, क्योंकि जब शक्ति प्रकट है तो एक साथ साथ में सारी शक्तियां एक ही व्यक्तित्व में कैसे प्रकट हो सकती है, तो भगवान ने विश्वरूप बता दिया। और विश्वरूप में जब काल का ही उसने दर्शन किया तो वो घबरा गया कि ये क्या मामला है, ये अभी ये सारी मित्रता अब कर रहा हूं तो उसमें मैंने कितने अपराध किए हैं, इसका उसको स्वयं दर्शन होने लगा तो माफी मांगने लगा, भगवान की माफी मांगने लगा। तो वो ये समझ रहा है कि हमने गलती की है, ये स्वरूप हमें पसंद नहीं है, ऐसे यानी कि हम अनजाने में ऐसे स्वरूप की झंखना करते हैं और हम ही फंस जाते हैं क्योंकि हमें इस स्वरूप के साथ कोई तालमेल नहीं लगता। जहां नाशपंथ होता है तो आत्मा कैसे स्वीकारेगी क्या उसका कभी भी नाश हो सकता है। तो यहां तो भगवान इतना जबरदस्ती से काम कर रहे हैं तो अर्जुन स्वयं घबरा गए कि नहीं नहीं भगवान आप हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं, सर्वसत्ताधारी हैं, आपका तो न तो आदि है न अंत है, और जानने का अधिक में प्रयत्न करूं तो मैं ही पागल हो जाऊंगा, बेहतर है हम पुनः वो अपना संबंध स्थापित कर लें। तब भगवान ने चतुर्भुज स्वरूप बताया, फिर भी इनके साथ अर्जुन की मित्रता का संबंध न होने के कारण उसने कहा कि नहीं नहीं आपका सौम्य वपु बताओ, जो आप हैं मूल रूप में वही, तो द्विभुज चतुर्भुज रूप भगवान का आदि रूप नहीं बताया। तो ये सारी जो व्यवस्था है कैसे ये रूप प्रकृति की सृष्टि में क्या क्या जिम्मेदारी निभाते हैं, क्या क्या उनका योगदान क्या है, तो ये सारा सर्वप्रथम अध्याय में गुरु तत्व के मार्फत और उसके द्वारा ही हमें समझ में आता है। तो गोलोक वृंदावन में कृष्ण भगवान के चतुर्व्यूह होते हैं, जो वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध के नाम से जाने जाते हैं। तो गोलोक धाम निजस्य देवी महेश हरि धाम सुतेषु तेषु ते प्रभव विस्ताचयन गोविंद भावि पुरुषम तम हम बजामि। ब्रह्मा जी आगे कहते हैं कि गोलोक धाम के नीचे सारे वैकुंठ धाम आते हैं, वैकुंठ धाम के बाद ब्रह्म ज्योति आती है, ब्रह्म ज्योति के बाद जो विरजा है वो विरजा कि उस पार दूसरी पार ये भौतिक तत्व आते हैं, जहां ये जो महासंकर्षण है, महासंकर्षण जो बलराम से जाने जाते हैं, वो वैकुंठ में हरेक लोगों में अपना भी विस्तार करते हैं, तो वहां भी चतुर्व्यूह होते हैं। कोई एक वैकुंठ लोक से उसमें जो दूसरे नंबर का संकर्षण है वो भौतिक सृष्टि की रचना के लिए स्थान लेता है, जिसे महाविष्णु या कारणोदक्षाय विष्णु कहते हैं। ये कारणोदक्षाय विष्णु भौतिक तत्व जब प्रकट नहीं हुए थे वो प्रधान प्रकृति कहलाती है, तो प्रधान प्रकृति में कोई चेष्टा नहीं होती, डायनेमिज्म नहीं। तब भगवान कारणोदक्षाय विष्णु ये सृष्टि की रचना के हेतु दृष्टिपात करते हैं, तो वेद यूं कहता है स इक्षति स इमान लोकान असृजत। सिर्फ भगवान ने अपनी दृष्टि ये जो निर्जीव तत्व है, जो प्रधान प्रकृति है, उस पर डाली, और जैसे जो कैटालिस्ट होता है, कैटालिस्ट यानी कि ये तत्व ऐसा है कि जिनकी उपस्थिति से ही सारी प्रक्रिया शुरू हो जाती है और स्वयं प्रक्रिया में भाग नहीं लेते, इनकी उपस्थिति ही काफी है, उसे कैटालिस्ट कहते हैं। क्या है हिंदी में कैटालिस्ट का अर्थ?
उत्प्रेरक।
उत्प्रेरक, जैसे किण्व होते हैं, किण्व यानी एंजाइम्स, वो भी कैटालिस्ट होते हैं, वो स्वयं प्रक्रिया में भाग नहीं लेते लेकिन उनकी उपस्थिति से बहुत सारी रासायनिक क्रिया शुरू हो जाती है। तो उसी तरह भगवान की दृष्टि जो आध्यात्मिक है, उनकी उपस्थिति से ही ये सारी भौतिक सृष्टि में खलबलाहट होती है। अब ये शंकरषण का आविर्भाव महाविष्णु में हुआ, जब सृष्टि की उत्पत्ति में असंख्य तत्व पैदा करने के जिम्मेदार सर्वप्रथम तीन गुण होते हैं, जो सत्व, रज और तम, इनके द्वारा सारी सृष्टि में इनके मिश्रण में, यानी कि तीन गुण है, तीन गुणों की अलग अलग प्रमाण में कितने प्रकार के मिश्रण हो सकते हैं, तीन गुना तीन यानी नौ, नौ गुना नौ 81, और उसका क्या विस्तार हो सकता है कि असंख्य। तो तीनों गुणों का मिश्रण भौतिक सृष्टि के पदार्थों सूक्ष्म गुण है, लेकिन पदार्थ अब जड़ बनेंगे, तो सूक्ष्म में से स्थूल पदार्थ की रचना के जिम्मेदार बनते हैं, इसलिए ये तीन गुण वाली प्रकृति को महत्त्व कहते हैं। भगवान विष्णु या महाविष्णु, कारणोदक्षाय विष्णु, जब ये पदार्थ मिश्रित होकर ब्रह्मांड बनाते हैं, तो असंख्य ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होती है। असंख्य ब्रह्मांड जब पैदा होते हैं तो वही महाविष्णु गर्भदक्षाय के विष्णु के रूप में असंख्य ब्रह्मांडों में अपना विस्तार करते हैं, तो विष्णु एक है या अनेक है?
अनेक।
ये अनेक विष्णु हरेक ब्रह्मांड में गर्भदक्षाय विष्णु जो सारे जगत का, यानी कि एक ब्रह्मांड एक जगत कहलाता है, तो अनेक जगत की बात है। हाँ, एक छोटी इकाई भी जगत कहलाता है। अब देखो ये इकाई तक कैसे भगवान अपना विस्तार करते हैं और उसकी जिम्मेदारी। हाँ, ये स्वरूप नित्यानंद प्रभु के रूप में जो प्रकट हुआ है इन पर हाँ कैसे समझते हैं? तो गर्भदक्षाय विष्णु और महाविष्णु में अंतर आपने देखा होगा। विष्णु तत्व एक है लेकिन विविधता के कारण, और विविधता क्यों है? क्योंकि कुछ हेतु है। हाँ, ये हेतु समझना है कि ये पैदा क्यों हुआ है। बिना हेतु कारण कोई वस्तु उपस्थित नहीं हो सकती। तो गर्भदक्षाय विष्णु, गर्भ समुद्र जो खारा पानी का समुद्र कहलाता है, वहां लेते हैं शेषनाग की सैया पर रहते हैं। महाविष्णु के पास शेषनाग नहीं है, वो स्वयं इनका विस्तार अब कर रहे हैं, तो शेषनाग की सैया पर लेते हैं और इनकी नाभि में से कमल प्रकटता है और कमल में ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। श्रीमद् भागवत में जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए हैं उनकी ये अवस्था अज्ञानमय बताते हैं, स्वयं को जानते नहीं कि वो कौन है इत्यादि, लेकिन ये उसकी जानकारी के लिए विष्णु सिर्फ तप तप दो शब्दों का उच्चार करते हैं, वो शब्द ध्वनि के द्वारा ही इनके आठ कानों में जब पड़ती है तब उनको कुछ स्मरण होता है, नहीं तो अपने आप अपने को जानने में ब्रह्मा जी जब असमर्थ थे तो जानकारी का विषय कितना आवश्यक है सबके लिए, कब तक हम मूड रहेंगे? जब ब्रह्मा जी के लिए ये परेशानी थी तो हमें भी परेशानी का समाधान करने के लिए उपाय तो करना ही चाहिए। इसलिए मनुष्य जन्म दिया है। तो ये गर्भदक्षाय विष्णु जिनकी नाभि में से कमल पैदा होता है और कमल में ब्रह्मा जी हैं, समुद्र मंथन के दरमियान भी वही गर्भदक्षाय विष्णु ने कुर्मारूप धारण करके योगदान दिया था और ये गर्भोदक समुद्र में से बहुत सारे रत्न पैदा हुए जिसमें महालक्ष्मी भी पैदा हुई थी। तब से महालक्ष्मी अब उनका स्थान लेती है गर्भदक्षाय विष्णु की सेवा में। कारुदक्षाय विष्णु के पास महालक्ष्मी नहीं है, गर्भदक्षाय विष्णु के पास शेषनाग है, ब्रह्मा जी भी कमल में पैदा हुए हैं और लक्ष्मी जी भी सेवा कर रही है। तो ये भेद शास्त्रकार बताते हैं। उसके उपरांत अब ब्रह्मा जी भगवान की ओर से जिम्मेदारी लेते हैं जिसे विसर्ग कहते हैं। भगवान ने सृष्टि की रचना के लिए ये प्राथमिक अवस्था पैदा कर ली, अब ब्रह्मा जी का टर्न आता है। ब्रह्मा जी सर्वप्रथम जीव है, इनको ज्ञान की आवश्यकता है, तो वो स्वयं अज्ञानता में पैदा हुए हैं, भगवान ने तो हेतु के लिए पैदा किया है। ये जीव तत्व में है, यदि कोई जीव तत्व किसी भी युग में सृष्टि की पुनर्रचना में योगदान देने के लिए असमर्थ हैं, तो भगवान स्वयं अपने आप को ब्रह्मा के रूप में विस्तार करते हैं। तो ये तो अपवाद है, नहीं तो ब्रह्मा जी का स्थान कोई सक्षम जीव ही ले सकता है, इसलिए उनको प्रथम जीव कहा। जब ब्रह्मा जी जीव है तो जीव तत्व में ही रहते हैं, वो न तो विष्णु तत्व बन सकते हैं न शिव तत्व बन सकते हैं। और सारे जीव को पैदा करने के लिए, यानी कि इन जीव तो कभी पैदा होता ही नहीं, लेकिन इनको अपनी अपनी इच्छाओं पूरी करने के लिए तो भगवान से पहले अलग हुए हैं। तो अब भगवान ने इसी माध्यम द्वारा, अपनी दृष्टि के माध्यम द्वारा ही जीव को ये भौतिक सृष्टि में बसाया। तो ये ब्रह्मा जी स्वयं प्रथम जीव के रूप में आते हैं और भगवान इनको प्रबुद्ध करते हैं, जानकारी देते हैं। और ब्रह्मा जी को जानकारी प्राप्त होने के बाद ही सृष्टि के ये विसर्ग में वो योगदान देते हैं और उनको प्रजापति बनना पड़ता है, उनको प्रजापति पैदा करना होता है। तो भगवान ने जो सीधा ज्ञान दिया है तो ज्ञान का माध्यम ये कर्णोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु और बाद में तीसरे नंबर के विष्णु जिसे क्षीरोदक्षाय विष्णु कहते हैं, वो परमात्मा के रूप में हरेक जीव जो पैदा हुआ है इनके हृदय में विराजमान होते हैं। हरेक जीव की कोशिकाओं में भी विराजमान होते हैं, हरेक निर्जीव पदार्थ में भी विराजमान होते हैं, इनके कण कण में भी पैदा होते हैं और बीच दो कणों के बीच में भी होते हैं। इसीलिए सारी सृष्टि का संचालन में जो रखरखाव करना है उसकी जिम्मेदारी ये क्षीरोदक्षाय विष्णु पर पड़ती है। जो परमात्मा के रूप में रहते हैं वो जीवों की इच्छा पूर्ण करने के लिए उसका शरीर का नियंत्रण करने में भी सहयोग देते हैं। हम अपने आप अपने शरीर का कितना नियंत्रण करते हैं? कुछ नहीं, थोड़ी सी इच्छा। ये स्वैच्छिक स्नायु जब तक काम करते हैं अपनी इच्छा के अनुसार, लेकिन बुढ़ापे में वो भी काम नहीं करना चाहते। तो अनैच्छिक स्नायुओं से जो शरीर के अंग बने हैं, जैसे कि हृदय है, यकृत है, बहुत सारे अंग, मस्तिष्क के अंग, हमारी इच्छा से कहां काम करते हैं? तो इनकी जिम्मेदारी कौन लेता है? किसी को हाथ में चोट लगी हो, खून बह रहा है, ये खून क्या स्वयं अपने आप बंद हो जाएगा? किसने रचना की है? कौन संभाल कर? तो उसे कहते हैं कि किसी की अनुकंपा वाली रचना है, ये तो किसी की अनुकंपा वाली रचना है। उसे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम भी कहते हैं अंग्रेजी, सिंपैथी यानी अनुकंपा। वो रचना कौन करता है? ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मयन सर्वभूतानि जंत्रारूढानि मायाया। जब परमात्मा के रूप में जो ईश्वर बैठा है वो संचालन कर रहा है और शरीर रूपी यंत्र पर जीव को इसकी इच्छा के अनुसार घुमाता है। कभी कभी लोगों को गाड़ी में घूमने का शौक होता है, वो कहते हैं आप अकेले ही जा रहे हो, हम भी ले, हमें भी ले चलो, आप सब जगह जाते हो, अरे हमें भी ले चलो, घूमने का शौक है। जनता रूढ़ानी माया, ये शरीर भी इसीलिए दिया है कि हमें इसके द्वारा हम भी अपनी घूमने की चेष्टा करें। हाँ, जो ज्यादा दौड़ना चाहता है ऐसी इच्छा के यदि मरता है तो उसको चित्ते का भी जन्म मिल सकता है। कोई पेट पे चलना चाहता है तो सांप का भी जन्म मिल सकता है। कोई चलना नहीं चाहता, धीरे धीरे ही चलना चाहता है तो हाथी का भी जन्म मिल सकता है। और कोई जड़ के समान एक जगह ही रहना चाहता है तो वृक्ष का भी जन्म मिलता है। ये तो एक उदाहरण, पर फिर भी हरेक योनिया हरेक इच्छा पूर्ण करने के लिए ही ये तीन गुणों का समावेश होकर ही बना। फिर भी ये क्षीरोदक्षाय विष्णु जो हरेक के हृदय में एक नियंता के रूप में है, उसके साथ साथ वो चैत्य गुरु के रूप में भी है। हृदय में परमात्मा को चैत्य गुरु कहते हैं। चैत्य गुरु क्या, उनको गुरु की उपमा क्यों दी गई? चैत्य यानी कि जो चेतना का स्रोत है वो ये भगवान का सीधा प्रतिनिधित्व करता है, सीधा। लेकिन कहां से आया है? देखो, गोलोक वृंदावन से, चतुर्व्योम से, यही एक तत्व हमारी साथ, हमें सदा साथी के रूप में हमारे साथ, उसे अविज्ञात मित्र कहते हैं। भागवत ने उसका नाम अविज्ञात भी कहा। पुरंजन की कथा में आता है अविज्ञात, हम नहीं जानते हैं लेकिन वो छुपा रहता है। हम जानने की कोशिश करते हैं तो काफी गड़बड़ी में पहुंच जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे भ्रमित मार्ग होते हैं जो सीधे शास्त्र का उदाहरण नहीं देते, उनके माध्यम से नहीं सीखता, जो गुरु शिष्य परंपरा द्वारा नहीं सीखता, वो सिखाने के लिए ही तो ये उपस्थित हैं। जो सिखा रहे हैं, जो अंतरात्मा से भी हमें स्फूर्णा होती है, उन पर हम नहीं ध्यान देते, इनका अनादर करते रहते हैं तो हमें वो कैसे प्रकट होंगे उनके मूल रूप में? तो ये बहुत विशिष्ट बात बताई जाती है कि सारे ये जो रचना है उसका चैतन्य चरितामृत का श्री कृष्णदास कविराज ने सर्वप्रथम उसका ही बोध किया, क्योंकि ये अपने आध्यात्मिक जीवन की बुनियाद रहती है। ये मार्ग से ही हम भगवान के पास पहुंच सकते हैं। तो ये चैत्य गुरु आदि शंकरषण, स्वयं बलराम, तो ये नित्यानंद राम के रूप में आज प्रकट हुए। नित्यानंद प्रभु के बारे में बहुत सारी रोमांच खड़ा करने की जो सारी इनकी विगत है, इनके अध्यात्म के चरित्र, इनकी भावनाओं की, इनकी समाधियों की, इनकी सारी जो भगवान के चैतन्य महाप्रभु के साथ उनकी भावात्मक लीलाएं जो है, ये बहुत गहरी है। वो स्वयं कैसे प्रकट करते हैं, इनके लिए ये जानने की आवश्यकता रहती है जो हमारी ज्ञान की बुनियाद है। सारा प्लेटफॉर्म एक विशुद्ध सत्व के आधार पर समझा जाता है। तो शास्त्र हमें यही मार्गदर्शन देता है अब चैतन्य चरितामृत का नित्यानंद प्रभु के बारे में बता रहे हैं। जब गोलोक वृंदावन की उपस्थिति की रचना अनंत जो भगवान श्री कृष्ण का प्लेनरी पोर्शन यानी कि कला है वही नित्यानंद राम के रूप में यहां प्रकट है। जैसे ये भूमि है, ये सृष्टि है, हम उसके अपने पांच इंद्रियों द्वारा पहचान कर सकते हैं, सही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो उनके पीछे जो जानने की इच्छा, जानने की क्रिया और जो जानना, ये तीनों समान होना चाहिए। जाना अनजाना कर लेना वो मनुष्य की बुद्धि सही नहीं, यही बताता है। जो आदमी बेवकूफ होता है तो जाना अनजाना कर लेता है, उस पर ध्यान नहीं देता। लेकिन अभ्यास द्वारा और वो भी गुरु शिष्य परंपरा में हमें प्रामाणिक रूप से जब हमें प्राप्त होता है तो वो स्वीकार करना चाहिए। जिसके पास कोई प्रमाण नहीं है वो प्रामाणिक कहलाता ही। तो चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, इनकी परंपरा में हमें गुरु, साधु और शास्त्र तीनों का प्रमाण की बहुत स्पष्टता बारंबार मिलती है और वही एकमात्र हमारी जानकारी का आधार बताता है। तो चैतन्य चरितामृतकार कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवान अनंत के नाम से जाने जाते हैं वो स्वयं भगवान की, कृष्ण की कला है और इनका नाम नित्यानंद प्रभु है। इसलिए इनकी लीलाएं जो चैतन्य महाप्रभु के समय में इनके साथ प्रकट हुई है, इनको समझने के लिए कितनी गहराई चाहिए। वो सामान्य मनुष्य 500 साल पहले आ गया तो क्या उसकी सारी लीलाएं हमें ऐसी पता चल जाएंगी? कि ये तत्व हमें इस ढंग से अवतरित मिलता है, उनका व्यक्तित्व समझना, उनका चरित्र समझना और उनकी लीलाएं समझना इतना आसान नहीं है। इसलिए कल्पना नहीं करना चाहिए। अचिंत्य तत्व के लिए कल्पना अवरोध पैदा करती है, भक्ति है। अचिंत्यस्ते खलु भावा तामस्तर्केन योजयेत्, प्रकृति परिभ्यश्च ताम अचिंत्यस्य लक्षणम्। जो अचिंत्य है उसे हम तर्क से नहीं समझ सकते, क्योंकि अचिंत्य का लक्षण ही ये प्रकृति के तीन गुणों से परे होता है, सत्व रज और तमो गुण वाली प्रापंच की बुद्धि, प्रपंच की बुद्धि हमें काम में नहीं आती। इसलिए शास्त्र व्यवस्थित रूप से अपने पारंपरिक गुरु द्वारा समझने की आवश्यकता बनी रहती है। तो ये नित्यानंद प्रभु कौन थे, इनके इनका जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ एक चक्र गांव में हराय पंडित और पद्मावती के बेटे हैं। इनके परिवार में काफी संतान थी, फिर भी नित्यानंद प्रभु के बारे में एक पवित्र माता पिता काफी इनका इतना गहरा लगाव था जो हम चैतन्य भागवत में समझ सकेंगे। यहां चैतन्य चरितामृत में हमें ये गुरु तत्व कैसे महाशंकर्षण बलराम आदि गुरु के रूप में और नित्यानंद राम के रूप में आता है उसकी व्यवस्था बताते हैं कि ये सत्य हकीकत होती है। तो उस ढंग से ये परम सत्य हमारे बारे में जानने की एकमात्र हमें ये व्यवस्था मिलती है, अन्यथा स्वयं अपने से परम तत्व जानना मुश्किल होता है। ये व्यवस्था परम सत्य के जानने के लिए वदन्ति तस्तत्त्वविदं यज्ञानं अद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। परम सत्य का परिचय जिन्होंने किया है वो तीन अवस्थाओं में करते हैं, एक निर्गुण ब्रह्म ज्योति, परमात्मा और अंत में भगवान। भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम होते इनका पूर्ण व्यक्तित्व होता है, पूर्ण चरित्र भी होता है, इनकी पूर्ण अवस्था भी बनी रहती है। ये कोई कल्पना का विषय नहीं है। व्यक्तित्व ही अन्य दो जो भगवान के पास हैं, यानी कि इनकी स्थिति और प्रभाव व्यक्तित्व के आधार पर होता है। व्यक्तित्व के ही आधार पर हम वो कहां है और क्या उनका प्रभाव है जान सकते हैं। यदि अव्यक्त होता है तो अव्यक्त का कोई प्रभाव नहीं। अव्यक्त स्वयं लटकता नहीं है, कहीं से पैदा हुए, इनकी उपस्थिति कैसे बनती है वो भी जानता है, लेकिन ये परम सत्य का अंश जो ज्ञान मार्गी है वो ब्रह्म ज्योति की मर्यादा में ही रहते हैं। जो ध्यान मार्गी है तो अपने हृदय में परमात्मा के व्यक्तित्व की पहचान कराने के लिए ही कोशिश करते हैं, लेकिन उनके साथ उनका व्यवहार जब तक स्थापित नहीं होता तो वो खाली ये भगवान के व्यक्तित्व को अपने हृदय में निहार करके वो शांत भाव में ही इनका चिंतन कर सकते हैं, लेकिन भगवान के व्यक्तित्व के साथ पूर्ण परिचय, पूर्ण संबंध, पूर्ण व्यवहार और पूर्ण लक्ष्य जिसे प्रयोजन कहते हैं, इसके लिए भक्त ही प्रवृत्त रहता है। तो भक्ति में हमें भगवान के परम सत्य के बारे में हमें तीनों चीज समझ में आती है। तो ये भूमिका जानना बहुत आवश्यक है। नित्यानंद प्रभु के चरित्र को समझने से पहले ये भूमिका इसलिए बताई जाती है क्योंकि ये कोई सामान्य पुरुष नहीं है। भगवान का कोई भी विस्तार सामान्य नहीं होता। तो यहां हम नित्यानंद प्रभु के बारे में कुछ पढ़ेंगे। जैसे चैतन्य चरितामृत कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने लिखा, उससे पूर्व भगवान वेदव्यास के अवतार कहलाने वाले वृंदावन दास ठाकुर, उन्होंने चैतन्य भागवत लिखा, उसमें नित्यानंद प्रभु कौन है, इनका व्यक्तित्व कैसा था, ये राय पंडित और पद्मावती के बेटे जो पहले से ही इनकी सारी वृत्ति अंतर्मुखी थी, वो अपने मित्रों के साथ हमेशा भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के नाटक खेला करते थे। ज्यादातर इनका बचपन ऐसे नाटकों में ही गया है। और ये छोटा बच्चा पहले से ही अवधूत स्वभाव का, अवधूत होना यानी कि इंडिफरेंट बनना, अंतर्मुखी कौन होता है, अपना मुख छुपाने वाला अंतर्मुखी कहलाता है क्या? अपनी अंतर की भावनाओं छुपाता, वो जाहिर नहीं करता, इसलिए अन्य मनस्क बन सकता है, इंडिफरेंट जिसे कहते हैं। वो बाहर का व्यवहार ऐसा है कि सब कुछ चीज होते हुए भी लगाव नहीं रखता, तो ये छोटा बच्चा पहले से ही अवधूत कैटेगरी का था। और इसकी सारी प्रवृत्ति भगवान के अनुलक्ष में थी। तो ये दोनों माता पिता इसकी ये वृत्ति पर काफी जागृत रहे, इनको ये भय बना रहा कि ये कभी भी भाग जाएगा, कभी भी चला जाएगा घर छोड़ के। लेकिन उन्होंने सोचा कि हम इसके बिना नहीं जी सकते, इसलिए उन्होंने इतना प्रेम दिया, जैसे हड़ाई पंडित खास करके इनके पिताजी इन पर इतना जबरदस्त लगाव रखते थे कि कहीं भी जाते उसको ले जाते और गोद में बिठाते, कहीं भी जाते, जैसे कभी अलग हो ही ना पाए, बाजार में जाओ कहीं भी जाओ उनको साथ में ले जाते। और वो भी नित्यानंद प्रभु बाहर से माता पिता के ऐसे वात्सल्य को पूर्ण रूप से सहयोग देते थे, लेकिन वो काफी अंतर्मुखी थे। ये दोनों साथ साथ में कैसे हो सकता है, क्योंकि पिता भी पवित्र होते ही जानते हैं, नहीं तो इनको पूर्ण ढंग से जानकारी कैसे प्राप्त हो। ये इतने पवित्र थे कि ये अवधूत के लक्षण क्या है, वो क्यों हमेशा भगवान की लीलाओं में चेष्टा रखता है या अपना विचार रखता है, अपना ध्यान रखता है, खाने पीने में वो माँ बाप के कहे अनुसार सब कुछ करता था, पर फिर भी हृदय में जो भावनाएं होती कि ये हमें छोड़ के चला जाएगा, तो उसकी बजाने से वो ज्यादा प्रेम करते थे, इतना प्रेम करते थे। देखो भगवान भी कैसे ऐसी व्यवस्था जहां धार्मिक वृत्ति वाले भी अपने बेटे पर इतना प्यार करते हैं लेकिन छोड़ना नहीं चाहते, समझते हैं फिर भी छोड़ना नहीं चाहते। तो एक बार एक सन्यासी घर पे आया, माधवेंद्रपुरी, वो बहुत निर्लिप्त किसी भी आकांक्षा के बिना वो पहुंच गए। हड़ाय पंडित ने स्वागत किया। हड़ाय पंडित का नाम हड़ाय ओझा भी था और वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि ओझा जो सरनेम आई उपनाम आया वो वहां उपाध्याय लोग जो रहते थे तो उपाध्याय को ओझा कहने लगे, यानी कि टुक नाम कर दिया उनका, तो हराय ओझा होड़ा ओझा, बंगाली में होड़ा ओझा कहते थे। तो हराय पंडित ब्राह्मण परिवार के अच्छे थे सब कुछ और शिव भक्त थे। नित्यानंद प्रभु भी बचपन में शिव जी की पूजा करते थे, वो मयूरेश्वर का मंदिर था, मोड़ेश्वर मंदिर कहते हैं बंगाली में, लेकिन मयूरेश्वर शिव जी शिवलिंग उनकी सेवा करते थे। तो माधवेंद्रपुरी पहुंच गए, माधवेंद्रपुरी दूसरे दिन चलने लगे तो हड़ा योजा के सामने प्रस्ताव रखते हैं, मैं सारे तीर्थाटन कर रहा हूं, कोई योग्य ब्रह्मचारी हमें मिला नहीं जो हमें तीर्थाटन करने में कोई साथ दे, मैं याचना करता हूं क्या आप दोगे? नित्यानंद को ले जा रहा हूं। तब हराय पंडित के सामने सारा रामचंद्र और दशरथ जी का व्यवहार खड़ा हो गया, क्योंकि अरे जिनको मैं इतना प्रेम करता हूं उनके साथ मैंने जानबूझकर इतना लगाव रखा है, अब मुझे छोड़ने की दशा आ गई, दशरथ महाराज का क्या हो, मेरा क्या हाल होगा, मेरा क्या हाल होगा। तो यदि विश्वामित्र को दशरथ महाराज प्रसन्न नहीं कर पाते तो शाप के भोगी बनते हैं। तो नामर्जी से भी उनको भेजना पड़ा, मैं यदि इस सन्यासी को मना करूं तो मैं पाप में भी पड़ूंगा और मैं छोड़ना नहीं चाहता क्योंकि ये तो मेरा कलेजा है, वो कैसे निकाल कर दे, यानी कि मेरी दशा भी ऐसी होगी। वो पद्मावती से पूछता है, हाँ पद्मावती को जगत धात्री कहते हैं, सारी पृथ्वी का पालन करने वाली है, हाँ इनका ऐसा स्वभाव था बहुत उदार माता का। तो हराय पंडित पद्मावती को पूछने गए, तब पद्मावती ने कहा आपकी जो इच्छा वो मेरी इच्छा होगी। तो हराय पंडित कहा हां ले जाओ, हाँ ले जाओ। नित्यानंद प्रभु तो चाहते ही थे कि कैसे घर के बाहर निकल जाए, लेकिन माधवेंद्रपुरी के माध्यम से ये मौका देखो मिल गया। भक्ति में ये तत्व है कि हम भगवान को पकड़ना नहीं चाहते हैं, पकड़ना ही चाहते हैं लेकिन छोड़ना नहीं चाहते हैं। देखो ये तत्व बहुत बढ़िया है, उसका जरा थोड़ा विस्तार से हम बताएं। भक्त लोग भगवान को पाना चाहते हैं और भक्ति यदि अहित की हो तभी ही भगवान पा सकते हैं, सही। इसके लिए भक्ति का मार्ग बहुत प्रामाणिकता से चुनना चाहिए और प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए भक्ति सीखने के लिए, और प्रामाणिक परंपरा द्वारा उसका उसकी जांच पड़ताल करनी चाहिए। प्रामाणिकता की आवश्यकता यहां पर जाती है, क्योंकि भक्त लोग जब भी अहित की अप्रतिहता यात्मा सुप्रसिद्ध, ये भागवत का सिद्धांत है, सवै पुंसाम परो धर्मो ये तो भक्ति रदोक्षजे अहित की अप्रतिहता यात्मा सुप्रसिद्धति। भगवान को प्रसन्न करने का एक ही मात्र कारण अहित की भक्ति कहलाती, और भगवान ने यह सारी सृष्टि हेतुपूर्ण बनाई। भगवान सर्व कारण कारण कहलाता है, और हमें कहते हैं कि कोई भी ऐसा कारण न हो अहितु की अप्रतिहता, भगवान की भक्ति में न तो कोई हेतु होना चाहिए न कोई रुकावट आनी चाहिए, अप्रतिहता वो करते ही हम यह आत्मा सुप्रसिद्ध थी, अपनी आत्मा परमात्मा सब प्रसन्न होते हैं, यानी कि भगवान को पा लेते हैं। ये परोधर्मो है, भगवान की अहितु की भक्ति करना परोधर्मों कहलाता है। सवई पुंसाम परोधर्म, द बेस्ट ऑक्यूपेशन फॉर द ऑल ह्यूमैनिटी, ये भागवत धर्म। तो भगवान ने सृष्टि पैदा की हेतु के लिए, और हमें भक्ति करनी है अहितु की। देखो कितना विरोधाभास, बिना हेतु भक्ति करना कितना कठिन है। लेकिन यहां देखो हम भगवान को पाना चाहते हैं, भगवान इनके घर इनकी कला के रूप में नित्यानंद प्रभु के रूप में अवतरित है, वो जानते हैं कि ये हमारा बेटा है, लेकिन अवधूत किस्म का निकला है, इनको पकड़ के रखो चला जाए, जब तक बचा पाए तब तक रखा है, लेकिन जब मौका आया कि अभी तो ये अपनी स्वतंत्रता से चलना चाहते, लेकिन माधवेंद्रपुरी को माध्यम बनाया और वहां जैसे कि विश्वामित्र मुनि आ गए और दशरथ महाराज को रामचंद्र जी को भेजना पड़ा। तो अहितु की भक्ति के लिए भगवान को छोड़ने की भी आवश्यकता होती है, या स्वयं भगवान अपने आप चले जाते हैं। क्योंकि वो इतने विरक्त हैं। हमारी आसक्ति हमारी गिनती के अनुसार यदि हम करते रहते हैं तब परेशानी पैदा होती है कि हम लट्टू बनकर यहीं पड़े रहते हैं भौतिक दुनिया में। लेकिन जब भगवान पर आसक्त होते हैं तो भगवान अपनी स्वेच्छा जाहिर करते मैं चलना चाहता हूं, फिर आपके आसक्ति उनके पीछे जो दौड़ोगे उद्धव जी ने किया था ऐसा। भगवान जब अपनी लीला समाप्त कर रहे थे, यादवों को खत्म कर दिया और स्वयं उद्धव जी को कहते जा बद्रिकाश्रम, तू ये देख नहीं पाएगा मैं जो संहार कर रहा हूं, तू देख नहीं पाएगा तू जा। क्यों? उद्धव जी भी बहुत सारे भगवान से आसक्त थे, यादवों के प्रति आसक्त थे। तो उद्धव जी कहते हैं कि मैंने वो आज्ञा का अनादर किया, इनके पीछे पीछे गया। तो उद्धव जी देखते हैं कि भगवान कैसे अदृश्य हो जाते हैं, उसका वर्णन बाद में आता है। लेकिन विदुर जी को ये अपना हृदय खोलते हैं, मैं इनसे कैसे विलग हो, मैं कैसे विलग हो सकता हूं। उन्होंने तो आदेश दे दिया। चैतन्य चरितामृत में नित्यानंद प्रभु को भी चैतन्य महाप्रभु आदेश देते हैं। जगन्नाथपुरी मैं कहना नित्यानंद तू तो अवधूत है लेकिन तू जा बंगाल में और गृहस्थ बन। गृहस्थ बन तो ही बंगाल में कृष्ण भावनामृत फैलाएगा। जा, क्या स्वयं को कोई इनके सारे जो मनोरथ हैं उनका तो चूरे चूरा हो जाएगा। ये अहैतुक भक्ति में आता है और भगवान की मर्जी के अनुसार तभी भक्त आगे भगवान को प्रिय बनता है। ताड़ाई पंडित चिपकने चाहते हैं अपने बेटे से और माधवेंद्रपुरी के माध्यम से। इनको यही घटना याद आ गई कि मेरा बेहाल हो जाएगा यदि कुछ न करूं। जा बेटा। और पत्नी ने भी कहा कि स्वामी आप जो कहते हैं वही ठीक है, जाने दो। भक्ति में ये देखो कि भगवान को बेटे पाकर देवकी ने भी यही हालत बताई है। तीन तीन युगों से वो कितनी तपश्चर्या कर रहे थे। सर्वप्रथम युग में वो वृष्णि और सुतपा के नाम से जाने जाते थे और भगवान को बेटे पाने के लिए तपश्चर्या कर रहे थे और हिरण्यगर्भ गर्भ के रूप में भगवान आए और कहते कि मेरे मुझे तो वेदों का उद्धार करना है। हरि बोल बाय बाय। वात्सल्य भाव की कोई भावना ही नहीं रही और भगवान चले गए। तो त्रेता युग में कश्यप और अदिति के रूप में आए और वामन अवतार में उन्होंने 7 साल का रूप धारण किया बटुक। अब पैदा होते ही आदेश दे दिया चलो बलि महाराज के यज्ञ में जाना है, पहले काम खत्म करो बाद में बात। लेकिन काम खत्म ही नहीं हुआ, वो अपने विराट रूप में पैसे वापस नहीं आए भगवान वामन के रूप में। कहीं लिखा है कि सारी सृष्टि बलि महाराज से छीन कर वो स्वयं कश्यप आदित्य के बेटे के रूप में रहे ना। कोई वात्सल्य भाव भी वहां भी नहीं। भगवान कितने स्वतंत्र हैं देखो। जब देवकी और वसुदेव के रूप में इनके बेटे के रूप में जब आए तो चतुर्भुज नारायण रूप में खड़े हो गए। देवकी कहे हम जानते हैं आप कौन हो, मारो गोली, मुझे तो लाला चाहिए। आप अपने मूल रूप में ऐसी लीला करो। तो भगवान कहे ये जेल में कौन लीला करेगा। वसुदेव चलो ले चलो। तो देवकी को तैयार होना पड़ा कि बेटा पैदा हुए भी हम अपने वात्सल्य भाव को त्याग देंगे। नहीं, त्याग नहीं देते, लेकिन वो बलि चढ़ा देते। तभी तो सारी दुनिया भगवान के विशुद्ध चरित्र बाल लीलाओं का दर्शन कर पाती है, नहीं तो हमें क्या पता। तब भक्ति अहेतु की होनी चाहिए और अप्रतिहता। यहां यदि किसी के मन में संकोच आता है कि मैं अपने बेटे को कैसे छोड़ू, वो तो स्वयं भगवान है और वो भी जाना चाहते हैं, क्योंकि सारी दुनिया को लाभान्वित करने के लिए ही भगवान आते हैं, क्योंकि सारे संसार उसके अंश मात्र से पैदा हुआ है। सारे जीवों पर अनुकंपा करने के लिए वो अपनी स्वतंत्रता का यथोचित उपयोग करते हैं, वो संकुचित नहीं है। भगवान इतने उदार दिल वाले हैं, हम छोटे हृदय वाले हैं, छोटे संकुचित, इसलिए हम किसी भी को भी भगवान मान लेते हैं। हम किसी को अनुसरण करते हैं, समझते हैं कि हाँ सब एक जगह है, कोई देवताओं की सेवा करते हैं तो कहे सब भगवान है। कितना संकुचित हृदय है। जब भगवान स्वयं इतने विशाल हृदय वाले, तो यही भगवान नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय दे कृष्णा है कृष्ण चैतन्य नाम ने गौर विषय नम। चैतन्य महाप्रभु जो आते हैं और उनके साथ उनका पूरक नित्यानंद प्रभु अपना ही स्वांश प्रदान किया, तो इनकी लीला समझने में हमें ये तत्वों, अपने भक्ति तत्व में ये तत्व समझने की आवश्यकता है कि भगवान स्वतंत्र हैं, तो अहितु की भक्ति करने वाले को भी भगवान की मर्जी ही देखनी पड़ती है, उसके लिए तैयारी करनी पड़ती है। जैसे कि हराज पंडित और नित्यानंद प्रभु में इतना लगाव, और नित्यानंद प्रभु में भी कभी ऐसी अपने माता पिता के विरुद्ध कोई ऐसा स्वभाव नहीं बताया है, उनकी सारी इच्छाएं पूरी करने दी। वो स्वतंत्र होते हैं, चले जाते हैं बिना पूछे, कौन रोकता था, नहीं, लेकिन प्रेम प्रदाय थे। लेकिन वो भी जब कहते हैं कि अभी वेकेशन खत्म हो गया, अभी काम करने चाहो या किसी तरह, अभी ये प्रेम का व्यवहार को और गहरा बनाओ। और प्रेम का व्यवहार गहरा कब बनता है? विरह में, विरह में। चलो आनंद करो विरह, एंजॉय द सेपरेशन। तो हराज पंडित के साथ नित्यानंद प्रभु बिना बोले चले गए, जैसे कि राही देखते हैं कभी वापस नहीं है। माधवेंद्रपुरी के साथ सारे भारत भर की यात्रा की बहुत सारा वर्णन है, कहां कहां गए, आखिर वृंदावन है। जब वो वृंदावन पहुंचे, बहुत सारे साल हो गए, समय हो गया, तब बताया जाता है कि चैतन्य महाप्रभु नदिया में अपनी लीला कर रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु तो जानते हैं, अपनी लीलाओं में हरि कीर्तन शिवाश आंगन में जब करते हैं तो शिवास इत्यादि सारे अंतरंग भक्तों को इतना आनंद प्लवित करते हैं चैतन्य महाप्रभु, हाँ कीर्तन की समाधियों में, इनके सात्विक भावों, इनका सबको आस्वाद कराते हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जानते हैं कि इन सब को आनंद होता है, मुझे दुख होता है, स्वयं को मैं नित्यानंद के बिना कैसे आनंद दे सकता, कब तक मुझे राह देखनी पड़ेगी। तो हम वहां से चैतन्य भागवत में से आपको शुरू करके बताते हैं कि चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु से कैसे मिलते हैं, क्या प्रसंग है। विश्वंभर की जय हो। नित्यानंद प्रभु की जय हो और गदाधर पंडित की जय हो। इसी तरह गौर सुंदर ने भक्ति के रस में अपने सारे सहयोगियों को आनंद में प्लवित किया। भगवान अपने सारे सेवकों को अपने जीवन के समान समझते हैं। वो भक्ति की समाधि में वो काफी एक दूसरे के गले लगते हैं और भगवान श्री कृष्ण का नाम गान करके आनंद की समाधि में अश्रु बहाते हैं। चैतन्य महाप्रभु का ये प्रेम देखकर सारे भक्त भी आनंद के अश्रु बहाते हैं। ये उपमा ऐसी है कि जैसे कि ये आनंद के अश्रु इतने बहते हुए जब पाषाण या स्थूल लकड़ी भी पिघल जाती है, ऐसा हृदय द्रवित आनंद है। सारे भक्तों ने उस समय अपनी सारी जायदाद, बच्चे, घर बार इत्यादि इनको बाजू पर रखा, इसकी चिंता नहीं की और दिन रात चैतन्य महाप्रभु के साथ कीर्तन में आनंद लेने लगे। उस समय में चैतन्य महाप्रभु वराह लीला की भी दर्शाते हैं और मुरारी गुप्ता को वराह रूप का भान कराते हैं। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु के ख्याल में नित्यानंद प्रभु आते हैं तो उसमें बताते हैं कि कि भक्तों के संगत में भगवान दिन रात भगवान के एक नाम संकीर्तन में आनंद लेते हैं, भक्तों को आनंद देते हैं, लेकिन अंतरात्मा से चेतन महाप्रभु स्वयं काफी दुखी रहते हैं, क्योंकि वो वहां नित्यानंद प्रभु की उपस्थिति नहीं है। इसलिए तो विश्वंभर हमेशा नित्यानंद को याद करते थे, और जो अनंत शेष से अलग नहीं समझे जाते। तो वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि कृपया करके ये सारे वर्णनों को आप समझने की कोशिश की कि नित्यानंद प्रभु कौन है। नित्यानंद प्रभु चेतन महाप्रभु के सर्वप्रथम आविर्भाव बताया गया है। जैसे पंचतत्व मंत्र में आप देखोगे कि पंचतत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। तो पंचतत्व रूप में कृष्ण भगवान अपना विस्तार सर्वप्रथम भक्त रूप में करते हैं। भक्त के स्वरूप जो नित्यानंद है, यानी कि बाहर का स्वरूप, और तीसरा है भक्तावतारम अद्वैताचार्य के रूप में, और चौथा है भक्त के भक्त, भक्त के भक्त वो गदाधर पंडित कहलाते हैं, और भक्ति की शक्ति वो श्रीवास। तो इन पांच तत्वों में ये स्वरूप, अपना स्वरूप को याद करना, हाँ, अपने स्वरूप को याद करना नित्यानंद प्रभु। चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को अपना प्राण समझते थे, हाँ। हमारा स्वरूप अंतर में होता है, ये बाहर का स्वरूप तो स्थूल है और पंच महाभूत का है, वो अपना असली तो माना ही नहीं, हाँ। वो त्रिगुणात्मक है। आत्मा का स्वरूप की बात कर रहे हैं, यानी कि हमें इस स्थूल देह में भक्ति के प्रयत्नों द्वारा अपने स्वरूप की सिद्धि करनी होती है। तो चैतन्य महाप्रभु ये सारी लीला करते हैं, अपने आप में संतप्त रहते हैं, इनको दुख होता है कि नित्यानंद क्यों नहीं है, हाँ, और सारे तत्व आ गए, यही क्यों नहीं, हाँ, क्योंकि ये तत्व हमेशा छुपा रहना चाहता है। इनको प्रकट करने के लिए भगवान स्वयं देखो कैसे प्रकट कराते हैं। ये जो स्वरूप है ना, बहुत आसानी से नहीं मिलता, वो छुपा रहता है, हाँ। यानी कि ये परम सत्य की परिचय में कितनी मेहनत करनी पड़ती है, वो क्या आसानी से मिल जाता है, बाजार में मिलेगा, पैसे देकर मिलेगा, हाँ। जो अनादिकाल से हम भूल गए हैं कि वो इतनी गहराई में छुपा है, तो क्या हमें ऐसे आसानी से प्राप्त हो जाएगा क्या? तो नित्यानंद प्रभु का स्वभाव है वो छुपे रहे, यहां प्रकट हो रहे हैं। हड़ाई पंडित के घर में उन्होंने वो अवधूत का भाव छुपा ही रखा था, बाहर लीला करते रहे लेकिन अपनी वास्तविकता छुपाए रखी। तो हराय पंडित के इतने गहरा प्यार होने के बावजूद भी जब योग्य समय आता है, मौका मिल जाता है, तो तब भगवान अपनी इच्छा अनायास ही सफल करते हैं। तो नित्यानंद प्रभु वृंदावन आ रहे हैं। इन्होंने कहां कहां घूमा उसका वर्णन बताया है। उन्होंने गया, काशी, प्रयाग, मथुरा, द्वारका, नरनारायण के आश्रम में भी वो गए, और ये जो बुद्ध लोग रहते हैं वहां भी गए थे, व्यासदेव की गुफा में भी गए थे, रंगनाथ, सेतुबंध, मलय सब जगह गए थे, अनंतपुर जो केरला में है वहां गए, गोमती, गंडकी, सरयू, कावेरी नदियों में भी नहाए, अयोध्या भी गए, दंडकारण्य, त्रिमल यानी कि तिरुमल, और वेंकटनाथ, सप्त गोदावरी, कन्याकुमारी सब जगह गए थे, रेवा यानी कि नर्मदा, महिष्मती, मल्ल तीर्थ, हरिद्वार सब जगह गए हैं, और मथुरा जब वापस आए तब की उसके बाद की चर्चा हम नित्यानंद प्रभु का ये अनंत रूप जो है वो कोई भी जान नहीं सका। उन्होंने जब मथुरा आए तब ये भाव प्रकट किया कि वो काफी गर्जना करते थे। ये मथुरा आकर उन्होंने अपने पूर्व वृत्तांत यानी कि इनका जन्मभूमि है वो देखकर गर्जना की। वो हमेशा बाहर की दृष्टि से एक बालक के समान शांत रहते थे, यानी कि बालक कभी शांत नहीं रहता, फिर भी जब सोता है तब शांति, नहीं तो नहीं। दूसरे कोई भाव प्रकट नहीं करते, लेकिन वृंदावन की ये सारी रज में उन्होंने काफी भ्रमण किया और बहुत लेटते थे। वो कभी ठीक ढंग से खाते भी नहीं थे, वो हमेशा वृंदावन की धूली से अपने आप को लपेटे रखते थे, ऐसा वृंदावन का भाव उनका रहा। और अपना जो मूल स्वभाव उनको छुपाए रखा। कृष्ण भावना ब्रजवासियों से सुनकर वो हमेशा इनकी चर्चा में भी व्यस्त रहने लगे। कभी कोई उसे दे जाता तो खा लेते, कोई दूध देता, लेकिन अपने स्वयं में उन्होंने कोई प्रयत्न नहीं किए। तो वृंदावन में इसी ढंग से अपने मूल स्वरूप को याद करते उसमें ही मस्त रहते थे। तो चैतन्य महाप्रभु वैसे संकीर्तन में नरिया में उस समय दूसरों को आनंद प्लवित करते, लेकिन स्वयं दुखी रहते थे क्योंकि नित्यानंद को नहीं देखते। तो नित्यानंद प्रभु ने ये भाव समझ रखा, इसलिए वो अपने अंतर में छुपाए, किसी के साथ और चर्चा नहीं करते। लेकिन वो भी जानते हैं कि यहाँ गौचंद्र मैं यहां और गौचंद्र वहां, तो अब अवश्य जाने की आवश्यकता बनी रहेगी।
तो वृंदावन में उन्होंने थोड़ी राह देखी, तो चैतन्य महाप्रभु का जब भावावेश की बातें उनको पता चला, वो तुरंत नवद्वीप चलने लगे और नंदनंदन आचार्य के घर रुके। नंदन आचार्य महाभागवत थे और नित्यानंद प्रभु के देह की कांति देखकर वो भी समझ गए कि ये कोई मामूली व्यक्ति नहीं है। यहां उत्तम अधिकारी की उपमा देते हुए समझाते हैं कि जो सर्वोत्तम उत्तम अधिकारी भगवान के पूर्ण विशुद्ध भक्त होने के कारण हमें भागवत में 11वें स्कंध के 2 अध्याय और 45वें श्लोक में ऐसी समझौती मिलती है कि सर्वभूतेषु यह पश्येत भगवत भावम आत्मनः भूतानि भगवती आत्मनि एषः भागवतोत्तमः। जो सबसे ज्यादा भक्ति में विकास करने वाले भक्त हैं वो सब स्थिति में यानी सब उपस्थिति में जो जो पैदा हुआ है उसमें आत्मा के आत्मा यानी परमात्मा का ही दर्शन करते हैं। पंडिता समदर्शिना, आत्मा ज्ञात्मा यानी कि परमात्मा के ही दर्शन करते हैं। जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप में है, तो इस ढंग से जब वो स्वयं भगवान के ही संबंध में सब कुछ देखते हैं और जबकि वो देहात्म भान से तो कब से मुक्त हो चुका है पहले ही, तो ऐसे महाभागवत यानी कि भौतिकता से मुक्त और आध्यात्मिकता में भी जो जहां परमात्मा के ही दर्शन करता रहता है ऐसा व्यक्ति महाभागवत कहलाता है। तो नित्यानंद प्रभु इसी तरह विशुद्ध भक्तों के भी सर्वोपरि थे। अभी अभिषेक है क्या, कितने समय, हमें तो 10:30 तक बोलने को कहा है। क्या समय हुआ, 10 बजने वाला। हाँ अच्छा, दूसरी जगह है, हमें बता देना तो समय पर बंद करेंगे। तो यहां ये समझाया गया कि महाभागवत कौन होता है, जो देहात्म भान से मुक्त हो चुका हो पहले, बाद में विशुद्ध भक्ति में वो प्रवृत्त रहता है। जैसे भगवद गीता में भी पता है कि ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समत सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते पराम। परा भक्ति पाने वाले पहले भौतिकता से विमुक्त होते हैं, यानी कि मुक्ति पहले होनी ही चाहिए तब विशुद्ध भक्त बन सकते हैं। भौतिकता से मुक्ति होनी चाहिए, बाद में विशुद्ध भक्ति की बात कर सकते हैं। तो भागवतोत्तम यानी कि जो महाभागवत जिसे कहलाता है उत्तम महाभागवत, तो ये भगवान कृष्ण के को केंद्र में रखकर ही सब चीज अपने व्यवहार में लाता है, बोलने में, खाने पीने या अन्य कोई कर्म करने में भी भगवान को ही केंद्र में रखता है। तो ये महाभागवत कहलाता है और नित्यानंद प्रभु ये सारे महाभागवतों के भी ओरिजिन है, उनका मूल कारण है। तो जो ऐसे महाभागवतों की शरणागत होता है उसमें भी ऐसे ही महाभागवत की कांति नजर में आती है, यानी कि महाभागवत की पहचान महाभागवतों के द्वारा ही होती है। आप एक सामान्य भौतिक मुक्ति से यानी भौतिकता से मुक्त कौन हुआ है उसकी पहचान कौन कर पाएगा? जो स्वयं मुक्त हुआ है वही। जैसे कि अवधूत लीला में भागवत में आता है कि प्रह्लाद महाराज की मुलाकात अवधूत से होती है, तो हमारी जानकारी के लिए प्रह्लाद महाराज उनसे सारे प्रश्न पूछते हैं कि तू भैया ऐसा कैसा, एक तो दिखाई देता है पट्टा और अजागर जैसा पड़ा रहता है यहाँ, और जब तू बोलता है तो भगवत चर्चा करता है, देख ये कैसा व्यवहार है तेरा, अवधूत ऐसा व्यवहार करे अपने सोचे। तो उसने कहा कि प्रह्लाद महाराज क्योंकि आप विमुक्त जीव हो इसलिए मैं आपको कहता हूं, क्योंकि आप ही समझ पाओगे दूसरे नहीं समझ पाओगे। उसने ये कहा कि भौतिकता की काफी हमारी रगड़ हुई, तो हमने सोच लिया कि ये तो हमारे विरुद्ध ही हो रहा है, तो उसका कारण हमने ढूंढ निकाला कि ये भौतिक प्रकृति जो भौतिकता यानी अपनी इच्छाओं को तृप्त करने के लिए ही आसक्त हैं उनके लिए बनी है, और जब मेरा स्वभाव वो नहीं है यानी कि मैं भौतिक तत्व नहीं, तो मैं भौतिक तत्व पर क्यों आधार रखूं? तो इसलिए हमने ठान ली कि अब बहुत हो चुका, इनफ इज इनफ, हम एक जगह पड़े रहेंगे। तो हमें इतना आत्ममनोमंथन हमने जब किया तो हमने ऐसा ही व्यवहार चालू कर दिया कि हमने ये ठाने कि हमें कोई मेहनत नहीं करनी, कोई ऐसे कर्म नहीं करने हैं कि हमें वो जंजाल में फंसा। तो हम खाने के लिए भी कोई मेहनत नहीं करते, कभी कुछ मिल जाता है तो हम संतोष मान लेते हैं, कई दिन हमें कोई हाथी पर ले जाता है और दबा के खिलाता है, और कभी सूखी रोटी भी नहीं मिलती, लेकिन हमने फरियाद करना छोड़ दिया। हम सारी सहनशीलता कर रहे, जिस प्रकार की सहनशीलता की आवश्यकता है हमने मंजूर रखी। इसीलिए हुआ क्या कि हम कमजोर नहीं रहे बल्कि पट्टे हो गए, बड़े मोटे शरीर वाले हो गए, लेकिन मैं शरीर नहीं हूं, वो तो अपने गुणों के अनुसार काम करता है, लेकिन मैं अपने गुणों के अनुसार काम करना चाहता हूं, इसलिए शरीर और हमारे में बनता नहीं। तो प्रह्लाद महाराज समझ ये तो मुक्त पुरुष है ही, और उसने ये कह दिया कि प्रह्लाद महाराज आप मुक्त हो इसलिए आप समझ सकोगे। एक मुक्त पुरुष दूसरे मुक्त पुरुष को समझ सकता है, जब हम लोग मुक्त नहीं है तो मुक्ति के बारे में किसी पर हम निश्चित रूप से नहीं कह पाएंगे, लेकिन हम सिद्धांत समझ पाएंगे, इतना ही काफी है। इस सिद्धांत को कितने मात्रा में हम अमल करते हैं, इस पर हमारी मुक्ति का आधार बनता है। सो उसी तरह हाँ, नित्यानंद प्रभु के जो आंतरिक भाव है हाँ, तो आंतरिक भावों की जब प्रत्याघात में जो संवेदना दूसरे ऐसे आंतरिक भाव बनाने वाले से मिलती तब हाँ ये स्पष्टता हमें पता चलता है। इसलिए वृंदावन दास ठाकुर की उपमा व्यासदेव से है, ये उपमा नहीं लेकिन ये संदर्भ है इनका। बहुत सारे भक्तों ने जो अंतरंग भक्त उस समय तत्कालीन थे उन्होंने अपने ख्यालों में यही सिद्धांत प्रकट किया है। चैतन्य संदर्भ और अन्य अन्य जो पुस्तकों लिखे गए हैं तो तत्कालीन शास्त्र गुरु और साधु इनके आध्यात्मिक अवस्था में जो चिंतन है और आध्यात्मिक संदर्भ कृष्ण भगवान की लीला के साथ कैसा बनता है तो ये संदर्भ में हमें बताया जा। ये हम सिद्धांत समझ सकते हैं, हम किसी पर ये उंगली निर्देश नहीं कर पाएंगे कि कहें और आप ये गोपी थी या वो गोपी। सिद्धांत के अनुसार हमें अपना स्वरूप प्रकट करने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाकर ही हम धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन जब भौतिक मुक्ति नहीं है तो पराभक्ति का किसी को सोचना नहीं चाहिए। ये सिद्धांत यहां स्पष्ट है। तो जिन्होंने नित्यानंद प्रभु की शरण ली है यानी कि इन्होंने जो अपने चरित्र द्वारा जो गुरु तत्व प्रकट किया है तो ऐसे शिष्य यही सिद्धांत को सही ढंग से समझ पाएंगे और उसका वर्णन कर पाएंगे और उनका भी हिस्सा यही लीला में निहित बना रहेगा। तो कह रहे हैं कि नित्यानंद प्रभु की ये सारी कांति जो इनका इनकी असली इनका असली व्यक्तित्व प्रकट करती है वो सारी अज्ञानता को नाश करती है जो ये अज्ञानता व्यक्ति के हृदय में ही पड़ी रहती है। हृदय ग्रंथि विद्यते हृदय ग्रंथि छिंद्यन्ति सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एव आत्मनिश्वरे। ये भागवत प्रिंसिपल है, भागवत का सिद्धांत है कि भगवान का नाम देखो कहां से कहां पहुंचाता है। विशुद्ध भक्ति पर ले जाता है। ये आपको पांच श्लोकों तो याद होंगे, शुणुताम स्वकथाम कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदय तस्य भद्राणी विदुनोति सुरित्सताम नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी तदा रजस्तमो भावा कामलोभादयश्च चेत एतर अनाविद्धं स्थितं सत्वे प्रसिद्धति एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञानं मुक्त संगस्य जायते विद्यते हृदय ग्रंथि छिंद्यन्ति सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनिश्वरे। भगवान का नाम स्मरण श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम हमें कहां से कहां पहुंचा देता है। इनके सारी हृदय की ग्रंथि में जिसमें अज्ञानता ही पड़ी है वो कट जाती है। छिंद्यन्ति सर्व संशया इसके द्वारा जो पैदा हुआ सारे संशय भी सब नष्ट होते हैं और क्षीयन्ते चास्य कर्माणि ये कोई भी कर्म करते हुए भी कर्म फल पैदा नहीं करने के कारण उसके सारे कर्म भस्मीभूत हो जाते हैं। भक्ति का कर्म इसी तरह भक्ति की अग्नि ज्ञानाग्नि से भरी पड़ी है, इसलिए सर्व कर्म जल जाते हैं। तो ऐसी दशा में ही जब भक्ति हमें भगवान का दर्शन यानी कि साक्षात्कार और ईश्वरे यानी कि परमात्मा का साक्षात्कार कराने में समर्थ बनती है। तो नित्यानंद प्रभु की ये कांति मनुष्य के हृदय में जो अज्ञानता की गांठें पड़ी हैं, इनको छिन्न भिन्न करने में समर्थ हैं। नित्यानंद प्रभु बहुत बड़े अवधूत कहलाते हैं और इनका शरीर भी बहुत मोटा था, मोटे शरीर वाले बताएं, लेकिन इनका स्वभाव बहुत गंभीर और बहुत धीर था। वो भगवान श्री कृष्ण का नाम दिन रात लेते थे। चैतन्य महाप्रभु स्वयं का वो स्थान यानी कि धाम के रूप में कहा जाता है। चैतन्य महाप्रभु इनके अंदर बसते थे। ये नित्यानंद प्रभु जो आधार बनते हैं चैतन्य महाप्रभु। तो हमारी ये अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में नित्यानंद प्रभु की आवश्यकता इनकी शरणागति और मूल गुरु तत्वों में समझने में कितनी है। हेनो विनय निताय भाई राधा कृष्ण पाए तेना, नित्यानंद प्रभु की कृपा बिना राधा कृष्ण तत्व नहीं समझ पाते, क्योंकि यही गौर सुंदर श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाही। तो चैतन्य महाप्रभु अवश्य नित्यानंद प्रभु का ही आश्रय लेते हैं। तो अभी तक नित्यानंद प्रभु की उपस्थिति नहीं है तो चैतन्य महाप्रभु के हृदय में खेद है, लेकिन सारे भक्तजन हरि कीर्तन की मस्ती में आनंद में प्लवित है। वो सबको भाव समाधि में डुबा देते हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के हृदय में स्वयं कुछ कमियां दिखाई देती हैं जिसे इनको शोभ होता है। तो नित्यानंद प्रभु कभी कभी बहुत जोर से बोलते हैं गौरांग, काफी जोर से बोलते थे, और लेकिन वो तो भाव समाधि में बोलते हैं, हम तो मजाक के लिए बोलते हैं, सही ना। और इसी भाव में वो ज्यादातर जैसे नशे में बने रहने वाले हैं, इनका ऐसा ही दिखाई देता, नशे में डूबे हैं, इन्हीं अंग की आंखें भी गोल गोल घूमती थी जैसे नशे में। जैसे बलराम जी ने वो वारुणी पी रखी हो और हमेशा वो भी गोल गोल आंखें घुमाते थे, इनका स्वभाव ऐसा था। तो इनका आकर्षक मुख बहुत सारे चंद्रमाओं की कांति भी कम कर देता था, और इनका सुमधुर स्मित सारे जगत का हित करने वाला, यानी कि यदि ये जो गुस्से में आ गए तो क्या हाल होता है वो देखना। नित्यानंद प्रभु भक्ति की समाधि में क्रोध करते हैं। अद्वैताचार्य के घर चैतन्य महाप्रभु को प्रसाद के लिए निमंत्रण करने के लिए नित्यानंद प्रभु को पहले बहुत बार मनाना पड़ता है, बहुत सारा पकाया हुआ है, सर्वप्रथम नित्यानंद प्रभु को बताना पड़ता है। तो कहते हैं ये इतना है, ये क्या बनाया, फिर नहीं खाना, चलो ये तो कुछ बनाते हैं क्या, अरे इतना सारा बनाया, नहीं नहीं इनको संतोष नहीं, क्यों होगा, सारे जगत का आधार है तो इनको दे उतना कम पड़ता है। तो स्वाभाविक रूप से वो स्वभाव वो बता देते हैं कि मुझे तो क्या देता, यदि मुझे खुश करना चाहता चलो लाओ और लाओ और लाओ और लाओ अनियोर अनियोर, ये स्वभाव नित्यानंद प्रभु का है, लाओ लाते जा रहो। इसी तरह नित्यानंद प्रभु नदिया आ रहे और नंदनाचार्य के घर रहे, इनकी लीला में वो भी आता है। ये नित्यानंद प्रभु की महिमा कौन गा सकता है जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु का संन्यास दंड भी तोड़ दिया था। देखो इनका ट्रांसेंडेंटल एंगर, आध्यात्मिक क्रोध क्या है वो समझने की आवश्यकता होती है। तो नंदनाचार्य ने नित्यानंद प्रभु को आवकार तो दिया, उनको खिलाया पिलाया और घर में रखा, लेकिन अब इनका पराक्रम पता नहीं चलता। तो देखो जब विश्वंभर यानी कि चैतन्य महाप्रभु को पता चला कि नित्यानंद आ पहुंचे हैं तो उनके हृदय में काफी आनंद आया और किसी न किसी बहाने चैतन्य महाप्रभु ने अपने साथियों को कहा जाओ नित्यानंद आया है, ढूंढ लाओ सारे गांव में से, कहीं से भी पकड़ लाओ। वो जानते हैं कि नित्यानंद वैसे बाहर निकलेंगे, इनको निकालने के लिए स्वयं को जाना पड़ेगा। देखो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु ने ये बताया कि एक बड़ी महान व्यक्ति आ रही है और उनको ढूंढ लो। तो ज्यादातर वैसे ही कौन होगा क्या होगा महान व्यक्ति के चरित्र क्या है ये तो पता नहीं चलता, लेकिन लोग जरा परेशानी में पहुंच गए इनके साथ ये कि कौन आ रहा है, वो समझ नहीं पाए। उन्होंने कहा दो तीन दिन में एक महान व्यक्ति आ जाएगा, और जब हम लोग पूजा पाठ कर लेंगे तब वो हमें मिल पाएगा। उन्होंने वो भी कहा आज मुझे स्वप्न में कुछ आया चैतन्य महाप्रभु कह रहे कि एक रथ जिस पर ध्वजा थी और उसमें ताल का वृक्ष था, ध्वजा में ताल का वृक्ष का चिन्ह था, वो सबकत सारी जिंदगी का जो महत्ता समझाने वाला जो तत्व है उसमें जो इतने प्रवीण हैं वो आज मेरे घर के दरवाजे पर आया।
ऐसा मिनिस्टर हमने देखा। बलदेव जी के रथ पर जो ध्वजा है उस पर ताल का चिन्ह होता, ताल वृक्ष का। ये और ये चिन्ह ऐसा है कि जगत में जो सारी अनित्य और अनावश्यक चीजें हैं वो हमारे जीवन में से हटा देती है, इसलिए ताल का वृक्ष बताया इतना ऊंचा होता है। क्योंकि सारे जगत में तो वस्तु बहुत काम चलाव होती है, थोड़े समय के लिए है, लेकिन जो लोग बलदेव के रथ पर आकर्षित है और जिसमें ये ध्वजा लहरा रही है, जिस पर ये ताल वृक्ष का चिन्ह है, तो उसे आवश्यक वस्तु तत्व पर ही आकर्षण बना रहेगा, अनावश्यक चीजें ही हटा दे। और ये ताल वृक्ष जो ऊंचाई है, उसकी जो ऊंचाई है उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है, ऐसा मैंने रथ देखा। हमारे मन के रथ पर, मनोरथ जब करते हैं तो मन के रथ पर हम बद्ध जीवात्माएं बहुत छोटी नगण्य अवस्था में हम अपने कल्पनाओं के घोड़े द्वारा घूमते फिरते रहते हैं। एक हम इतनी छोटी जीवात्मा है मन के रथ पर चढ़कर और कल्पनाओं के दौड़े घोड़े दौड़ाते रहते हैं, तो उसके बजाय हमने स्वप्न में इतना विशाल रथ देखा और उतनी ध्वजा, ऊंची ध्वजा और बड़ी ध्वजा हमें देखी कि जिसकी कल्पना नहीं हो सकती। लेकिन ये ताल वृक्ष पर फल लगे हैं, ये बलदेव तत्व जो यानी कि ये गुरु तत्व है, ये कितना विशाल तत्व है जो भगवान श्री कृष्ण से चला आता है। तो कृष्णम वंदे जगत गुरुम कहना तो बहुत मामूली चीज है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज की जो व्याख्या है गुरु तत्व पर, वो समझने से हमें पता चलता है कि ये गुरु क्या है। जगत गुरु कहकर हम क्या कहेंगे, लेकिन यदि बृहद जगत की बात है तो भौतिक और आध्यात्मिक दोनों जगत का समावेश होना चाहिए। वो भी समझाने के लिए एक जगत गुरु कहेंगे, भौतिक जगत गुरु यदि कृष्ण भगवान को कहेंगे तो भौतिक जगत गुरु यानी कि भौतिकता से छुड़ाएंगे, सही ना, और यानी कि मुक्ति के पथ पर ही अग्रसर करेंगे। लेकिन ये बलदेव जो मूल गुरु है, आदि गुरु, वो भौतिक और आध्यात्मिक दोनों जगत के गुरु है, तो मुक्त होने के बाद ही तो आध्यात्मिकता में हमारी पहचान, संबंध, व्यवहार और लक्ष्य की प्राप्ति इनके माध्यम से ही होती है। तो सिर्फ मुक्ति आवश्यक नहीं, भक्ति करने वाले को मुक्ति तो रास्ते में मिल जाती है,
क्योंकि इनका रास्ता कहां पहुंचाता है, भगवान के चरण कमल तक। इसीलिए मुक्ति कृतांजलि, मुक्ति मेरे द्वार पर खड़ी रही है हाथ जोड़ करके, स्वामी क्या सेवा करूं। तो भक्त कहता है कि माता जी माफ करना फुर्सत नहीं है। बिल्व मंगल ठाकुर ने कहा मुक्ति हाथ जोड़कर मेरी राह देख रही है, दरवाजे पर खड़ी है, स्वामी क्या सेवा करूं, माफ करना फुर्सत नहीं ठाकुर जी की सेवा चलो। तो इसीलिए जो परव्योम है, परव्योम में हो गए जय श्री प्रभुपाद की जय। तो दो मिनट में खत्म करता हूं। हरिदास ठाकुर और श्रीवास पंडित को चैतन्य महाप्रभु ने जाओ जाओ तुम भी जाओ, और 9 दिन तक घूमते रहे सारे नदियां कि कौन आया है, क्या कौन महाभागवत है, ढूंढ नहीं पाए, वापस आ जाए। तब चैतन्य महाप्रभु मुझे ही जाना पड़ेगा, ऐसे विशुद्ध भक्त ये तो महाभागवत है, लेकिन नित्यानंद प्रभु के तौल में कोई नहीं आता। तो चैतन्य महाप्रभु कहके चलो हम कीर्तन करके जाते हैं, और सीधे यदुनंदन आचार्य के घर पर पहुंच गए। तब उनकी मुलाकात जो है इनका वर्णन करने के लिए हमारे पास टाइम भी नहीं। जय नित्यानंद प्रभु की जय।